ಏಕವಚನ ಪರಂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ಬೇಗಾರ ಎತ್ತನೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರ ದಿನ ಸಮಿತಿಗೆ ಇರಾನ್
ನಾರಾಯಣ 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 ರಾಮ 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 ನಾರಾಯಣ 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 ಕೃಷ್ಣ
ये महाराज जी जो मैं खाता हूँ मैं पीता हूँ जो मैं वृत्ति है
वृत्ति भी है अहंकार भी है अपना अभिमान भी है अहंकार ये खास करके और व्यक्तित्व जो है एक जैसी बना व्यक्तित्व और जिसको दूसरे शब्द में अहम भाव है ये मिटना मुश्किल व्यक्तित्व मिटना कठिन पड़ता है। ये परिचन्नता जब तक रहेगी तब तक वास्तविक तत्व का अनुभव नहीं होता क्यों आवाज तो सुख है थोड़ा कम सुनिए
जब तक परिचिन्नता है
हाँ तब तक बोध नहीं होता बंधन नहीं बैठता तो एक अहम है एक अहम दृष्टि है एक अहम स्फूर्ति है तो अहम में जो व्यक्तित्व अभिमान है एक जैसी बना कल ये जो बात बताई थी कि मैं हूँ इसमें आपने पूछा था ना कि स्पष्ट बोध नहीं होता इसका साफ नहीं होता कल भाई ने कहा थे हाँ साफ नहीं दिखता तो फिर साफ दिखता है तो अगर न दिखता हो तो है इसका क्या पता अहम ये है इसको क्या पता दिखता है तभी तो है मानते हैं नहीं दिखे तो है कि नहीं है क्या पता है? तो सब दिखता है इसमें आप क्या सुनाओ
अहम वृत्ति है मैं खाता हूँ मैं पीता हूँ मैं जाता हूँ ये जो व्यवहार अहम ये तो प्राकृतिक तत्व है एक वो वृत्ति है
ये वृत्ति प्राकृतिक तत्व तो अहम सामान्य है वो तो सामान्य अहम है अपना अपना अहम उस अहम के साथ जुड़ा हुआ है ये अठारवा दिन आया है ना ये तो अहंकार आश्रित नयो से इसी मन से मिथ्येश व्यवसाय से प्रकृति स्वाम नियोक्षति ध्यान दें इस पर कि अहंकार का आश्रय लेकर कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये युद्ध नहीं करूंगा तो जो कहता है ये तेरा निश्चय मिथ्या है क्योंकि प्रकृति तेरे को लगा देगी तो ये प्रकृति है परमात्मा की वो प्रकृति परमात्मा की है और उस प्रकृति जो सामान्य उसके साथ में जुड़ी हुई सबकी प्रकृति है ऐसे प्रकृति कहते हैं स्वभाव को प्रकृति कहते हैं आदत को अपना जो स्वभाव बना हुआ है अपनी जो आदत बनी हुई है स्वाभाविक उसका नाम प्रकृति हमारी प्रकृति ऐसी हमारा स्वभाव ऐसा है स्वभाव का वास्तु प्रकृति है तो ये प्रकृति है उस परमात्म तत्व तो प्रकृति के साथ में मिली हुई है अब वो प्रकृति है जैसे अर्जुन के लिए कहा तो अर्जुन के लिए प्रकृति है क्षात्र प्रकृति क्षत्रिय की तो क्षत्रिय में शौर्य तेजो युधिर हाँ दानम इस भाव से शासन कर्म स्वभावजम जो स्वभाव को आदत को प्रकृति को ऐसे अपना एक है नहीं स्वभाव, तो क्षत्र प्रकृति होती है, क्षत्रिय का स्वभाव होता है, ब्राह्मण का ही स्वभाव होता है, क्षत्रिय का स्वभाव विशेषी का सूर्य का स्वभाव होता है, तो स्वभाव है वो प्रकृति है, तो उस प्रकृति का संबंध परमात्मा के परमात्मा की प्रकृति है उसके साथ संबंध है, समस्त अहंकार का व्यष्टि अहंकार के साथ संबंध है, तो प्रकृति का संबंध है, प्रकृति स्वांग नियोषित प्रकृति लगा देगी, कौन सी लगा देगी, क्षात्र प्रकृति, युद्ध जैसा पलायनम, युद्ध होगा तो उस पलायन नहीं हो सकता, क्षत्रिय हट नहीं सकता। अब युधिष्ठिर महाराज में जुआ खेलने की आदत है, तो वो आदत है वो प्रकृति के साथ है संबंध, आहु तो नूतादपी रणादपि ऐसा आता है, आहूत कह दिया राजा मेरे सामने तो हाथ कर रहे, तो फिर क्षत्रिय का हटना मुश्किल है, क्षत्रिय प्रकृति है वो हट नहीं सकता, तो वह प्रकृति को लगा देगी, क्षत्रिय प्रकृति युद्ध में लगा देगी, अगर क्षत्रिय प्रकृति में लगकर तुम युद्ध करेगा तो पतन होगा, और वो मेरे कहने से युद्ध करेगा उद्धार हो जाएगा, ये मनुष्य सब काम करते हैं ना, तो अपनी प्रकृति के वश में होकर करते हैं, इससे उसमें पतन होता है, वे अगर शास्त्र के अनुसार करे अपनी प्रकृति के अनुसार काम भी शास्त्र की आज्ञा से करे, गुरु की आज्ञा से करे, संत महात्मा का जीवन मुक्त हो उस पुरुष की आज्ञा से काम करे, तो आज्ञा से काम करते हैं तो वो प्रकृति के अनुसार करने पर भी उद्धार करने वाली हो जाती है, भगवान के द्वेष भार से युद्ध कर, तो भगवान कहने से युद्ध करे, और युद्ध करना प्रकृति है, तू अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध करेगा तो अहंकार नशी विनक्षसी, अरे प्रकृति स्वांग नियोगी, सिद्ध क्या होगा, युद्ध तो करेगा तू और तेरा पसंद होगा, और मेरे कहने से अहंकार का आश्रय मैं लेकर मेरा आश्रय लेकर करेगा तो युद्ध करेगा और उद्धार होगा, बात तो वही है, युद्ध करना ही है, तो प्रकृति स्वांग नियोगी एक प्रकृति है, बैल खरीदने वाले आदमी होते हैं ना, गांव में जाते हैं बैल खरीदते हैं, 5, 7, 10, 15, 20, 50 बैल हो गए, तो बैलों को लेकर चलते हैं तो बांधे तो कैसे बांधे, एक रस्सा होता बड़ा लंबा इधर गाड़ लिया, इसमें लकड़ी बांध के पीछे में गाड़ दिया, इधर इधर लकड़ी बांध उधर गाड़ दिया, बहुत बड़ा रस्सा, उस रस्से के साथ बांध दिया, उस बैल को बांध दिया, इस बैल को बांध दिया, उसको बैल के बांध दिया, बांध दिया, यहाँ दोनों सब बैलों को बांध देते, समझिए ना आजा, तो वे बैल सब उस बड़े रस्से से बंधे हुए हैं, छोटे छोटे रस्से से एक एक बैल बंधा हुआ है, ऐसे सामान्य प्रकृति है परमात्मा की और अपनी अपनी प्रकृति स्वभाव है, तो उस रस्से के साथ बंधी हुई जो प्रकृति परमात्मा की प्रकृति के साथ बंधी हुई है, अब वे प्रकृति में बंधे हुए हैं तो स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति की परवश है, प्रकृति स्वामी तो लगेगी प्रकृति, तो वो प्रकृति में लगना अपनी स्वतंत्रता से लगता है, और एक किसी महात्मा के संत के गुरु के माँ बाप के कहने से लगता है, काम वही है, काम दूसरा नहीं है, पर उन कहने के लगने से अपने लगने में बड़ा भारी फर्क है, अपने अहंकार करेगा तो फंस जाएगा बंध जाएगा, और उनका आज्ञा उनका हुक्म रहेगा, उनकी आज्ञा के अनुसार करेगा तो बंधन नहीं होगा, श्लोक हम देखो आप बात कह रहे हो कि तुम अहंकार आश्रय न योग से इति मन्य से मिथ्या से, ये तेरा मान्यता झूठा है, प्रकृति स्वांग नहीं हो अहंकार न सोची नहीं सुनेगा तो पसंद हो जाएगा तो प्रकृति लगा देगी तो जो कराएगी जो तेरे करना पड़ेगा और मेरी बात नहीं सुनेगा तेरे पसंद हो जाएगा और वही युद्ध मैं कहूँ मेरे गाना करेगा तो उद्धार हो जाए माम एकम शरणम अहम तो सर्व पापे भी मोक्ष सब पापों से मैं मुक्त करूंगा वहाँ मुक्त कौन करेगा प्रकृति के प्रसूल करेगा तो कार्य करते हैं वही कार्य करते हैं वो कार्य आज्ञा जो करे तो उसमें बड़ा फर्क है। मैं कहूँ भोजन करते हो आप और वो भोजन संत महात्मा ने कह दिया लो रोटी खा ले और भोजन कर ले जो आज्ञा मैं करता हूँ वो भोजन करना और अपने मर्जी से भोजन करना दोनों भोजन करने में फर्क है चीज तो वही है परंतु उनकी साथ में आज्ञा मिल गई है वो आज्ञा की जिम्मेवारी आज्ञा देने वाले के ऊपर आ गई है ऊपर आ जैसे वह उबेर सोच करेंगे और उतनी जिम्मेवारी आपकी हट गई है तो वो हट जाएगी अर्जुन की तो कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते हैं मेरा नहीं मानेगा तो तेरी प्रकृति जो तू करेगा तेरे पसंद होगा तो वो स्वभाव है उन स्वभाव में खास अहम है मैंपन है वो मैंपन के बसीभूत करे तो मैंपन अपने से अलग है मैंपन ऐसा किसी की समझ में नहीं आता कल पर बात कही तो कही मैंपन है उसको तुम इधनता से देखो क्यों भगवान ने कहा है भूमिरा कुल अहंकार इसी में भिन्ना प्रकृतिरता अपरा यम इधनता से कहा है तो मैंपन है वो दृश्य जैसे ये दृश्य है ऐसे मैंपन भी दृश्य है ये प्रसिद्धि है और उसका भान है उसका अनुभव होता है मैंपन का तो मैंपन का अनुभव होता है कि दिखता नहीं तो मैं कहता हूँ दिखता है आप होगा मैं हूँ ऐसा हर एक आदमी का मैंपन दिखता है कि नहीं जैसे मैंने दृष्टांत दिया कल कि जैसे आकाश में तारा अलग अलग है ऐसे सब आदमी इनकार पशु पक्षियों का मैंपन है वो अलग अलग है ऐसा भान होता है कि नहीं बताओ
सब अपने में मैंपना मानते
हैं अपने मैंपना मानते हैं। मैं तो कुत्ते ने कह दिया कुत्ता बैठ कुत्ता घूर रहा है कि मैं बैठा तू क्यों आया तो ये मैंपन है कि नहीं दिखता क्यों स्पष्ट दिखता है कुछ संदेह है क्या इसमें मैपन दिखता है तो ऐसे अपना मैपन है वो एक देश में दिखता है एक देश में एक जगह ये मैं हूँ यहाँ अब वहाँ मैं नहीं हूँ मैं यहाँ पर हूँ तो वो मैपन अलग दिखता है तो औरों का अलग अपना दिखता है जैसे तारे दिखते अलग अलग ऐसे एक तारा तुम भी हो कई अहम है जिसमें एक अहम अपना भी है वो भी अहम उसी जाति का ही है जिस जाति के दूसरे अहम है यही है ये प्रकृति का है ये स्वरूप का नहीं है भगवान का अपरा प्रकृति है ये निकृष्ट प्रकृति है और इससे अन्य प्रकृति है वो मेरी प्रकृति है अर्थात मेरा अंश है जीव रूप से ममी अंश हो जीव लोग ये मेरा अंश नहीं ये प्रकृति का अंश है और मैं हूँ परमात्मा उसका मेरा अंश है वो अंश तो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी है ऐसे ये प्रकृति का अंश है वो अविनाशी नहीं है वो चेतन नहीं है अमल नहीं है सुखराशी नहीं है उल्टा है जड़ है और दुख राशि है वो सुखराशि दुख रूप है दुखालय है वो तो अविनाश नहीं विनाशी है असमल है और सहज दुख राशि है चेतन अमल सहज सुख राशि इससे उल्टा है वो प्रकृति का अंश है वो अहम प्रकृति का अंश है और तू मेरा अंश है तो मेरा अंश है वो प्रकृति के अंश को इधमता से देखकर त्याग कर दे ये हुआ कर्ण निरपेक्ष साधन विवेक प्रधान साधन विवेक प्रधान क्या कि जड़ और चेतन का विवेक कर दिया तो ये अहम जड़ है और जिसका प्रकाश है तू स्वयं चेतन है तो तेरे जानने में आता है अहम तू जानने वाला है तो जानने में आने वाला जैसे मैं देखता हूँ देखने वाले भीत दिखती है तो भीत और मैं एक नहीं हूँ दो है भीत दिखती है वो अलग है मैं देखने वाला अलग हूँ तो ये देखने वाला अलग है दिखने वाला अलग है। अब इसमें थोड़ी सी बारीक बात बताओ देखने वाला एक देश में होकर देखता है तो एक देश में अहंकार है तो वो अहंकार भीत की जाति का ही है आंख और रूप और देखना तीन हो गया ना मैं देखने वाला भीत देखने वाली भीत का देखना इसको कहते हैं त्रिपुटी तो ये एक जाति की हुई एक जाति की तो वो दिखता है अगर जाति नहीं हो तो नहीं दिखेगा जैसे कान से नहीं देख सकते आंख से सुन नहीं सकते कान की जाति एक है नहीं है इनकी जाति एक है इस वास्ते देखते हम तो देखने वाला वो आँख के साथ में अहम अभिमान करता है देखता हूँ सुनता हूँ बोलता हूँ तो क्या सुनता हूँ तो कान में बैठ गया देखता हूँ तो आँख में बैठ गया खाता हूँ तो जबान रसना में बैठ गया ऐसे हर एक काम करता है तो उसके साथ एक होकर के करता है तो उन सबके साथ में अहम मिलता है वो अहम है संसार के साथ मिला हुआ प्रकृति का और उनको जो प्रकाश करता है जिस प्रकाश में भीत दिखती है और नेत्र दिखता है और देखना दिखता है ये तीनों ही त्रिपुटी दिखती है जिसमें वो प्रकाश आपका स्वरूप है ये देखने वाला अहम आपका स्वरूप नहीं है तो ये जड़ है तो ये भी दिखता है तो देखने वाले से अपना स्वरूप अलग है उसमें ये दिखता है तो स्पष्ट नहीं दिखता तो मैं कहा सबका अहम 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 है ऐसे ये भी एक अहम उसी जाति का है जो सबका है कुत्ते में भी वही अहम है हमारे में वही अहम है ये अहम दिखने वाला है अहम का जो जानने वाला है वो अहम से अलग है अब ये विवेक करना है खास अहम और अहम का ज्ञाता अहम का जानने वाला तो अहम का जानने वाला है वो तो है आपका स्वरूप और अहम है ये प्रकृति का स्वरूप है और वो आपका स्वरूप है वो परमात्मा के साथ एक है और ये अहम प्रकृति के साथ है प्रकृति और संसार साथ हुआ और वो इनको जानने वाला वो परमात्मा के साथ हुआ तो इन इस चार इन अंग को त्याग कर दे छोड़ दे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए उसको तो ये अहम अलग है हमारे से ये बोध होना आवश्यक है और ये बिना विवेक के नहीं होगा कर्म सापेक्ष होगा ही नहीं है कर्ण के साथ होगा होगा ही नहीं कर्ण के साथ तो अहम रहेगा बुद्धि रहेगी मन रहेगा ये करण है मन बुद्धि चित्त अहंकार ये करण है इनके द्वारा अगर चलोगे तो इस अहंकार की और बुद्धि की आवश्यकता होगी इसके बिना आप चल ही नहीं सकोगे क्यों कर्ण को साथ लेकर चलते हो चिंतन करते हो ध्यान करते हो मनन करते हो तो अहंग और बुद्धि को लेकर करते हो तो इनका त्याग कैसे होगा तो ये जड़ता बहुत दूर तक रहेगी और जब विवेक प्रदान रहोगे कर्म निरपेक्ष तो जड़ता से अपने को अलग माना माने ये भी चिंतन आदि करना है ये भी प्रकृति का कार्य है ध्यान करना है ये प्रकृति का कार्य है समाधि लगाना ये भी एक प्रकृति का कार्य है समाधि में उत्थान और समाधि दो होती है परंतु समाधि को देखने वाले में दो नहीं होता है उस समाधि करो उत्थान उत्थान हो दोनों एक समान प्रकाशित होते हैं देखने में न देखने में सुनने में न सुनने में जानने में न जानने में वो उसका प्रकाश जो है वो है जो ही रहता है उसमें विकार नहीं होता है निर्विकार है तो विकारी निर्विकार का जो विवेक है ये विवेक प्रधान है जो बहुत जल्दी तत्काल उन्नति करता है, एकदम प्रकाश करता है, एकदम परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है जड़ के अलग हो जाने से। तो ये अलग है आम आम, ये वृत्तियां अलग है, कर्ण अलग है, और कर्ता है जो कर्तापन उसमें नहीं है, कर्तृत्व नहीं है तो कर्ण कहाँ होगा, ऐसा चेतन है उसको अलग अपने अनुभव कर लो अनुभव। तो ये अनुभव क्या होगा, चेतन का अनुभव नहीं होगा, अनुभव जड़ का होगा, जड़ है उसका अनुभव होगा, अनुभव होने से अनुभव जिससे करते हो वो अनुभविता है। जैसे आंख से सबको देखते हैं पर आंख से आंख नहीं दिखती, आपकी आंख मेरे को दिखती है तो आपकी आंख नहीं दिखती, आपका आंख के रहने वाला स्थान दिखता है। कई ऐसे सूरदास होते हैं आंख में भी साफ ढोला साफ दिखे पर तो दिखता नहीं है उनको, दूसरे देखे तो आंख वाला दिखता है ऐसा परंतु उसको दिखता नहीं है। तो देखने की शक्ति वो दिखती नहीं है, तो देखना किसने होता है, आंख को देख नहीं सकते, जिससे देखते हैं उसका नाम आंख है, ऐसा ही करना पड़ेगा, ये आंख ऐसा नहीं कह सकते, ये आया नहीं ख्याल में, ये आंख है ऐसा आंख को नहीं देख सकते, जिससे देखते हैं वो आंख है। तो जिसने देखते हैं ऐसे अगर आंख को देखते हैं, आंख को इधम तस नहीं देख सकते, ऐसे ही ये सब कुछ जानते हो, पांच ज्ञान इंद्रियों से काम, दस इंद्रिय पांच कर्म इंद्रियों से काम जितने होते हैं, ये सब काम होते हैं एक अहम और एक बुद्धि वृत्ति से, पर बुद्धि वृत्ति भी कभी काम करती है कभी नहीं करती है। बुद्धि को ठीक बुद्धि समझ गई, ये आज तो समझ में ठीक नहीं आया, कल का धुंधला दिखता है और साफ दिखता है और नहीं दिखता है, ये सबका सब प्रकाशित होता है स्वरूप से, वो है आपका स्वरूप। इसमें दिखता न दिखता मंद दिखता ऐसा है, परंतु उसमें तो वो है जो का क्यों है, मानो साफ दिखने को भी मंद दिखने को भी और न दिखने को भी प्रकाशित करता है, तभी तो इनका भेद आपके समझ में आता है, साफ दिखता है कम दिखता है नहीं दिखता है, ये भेद भी तो कोई देखने वाला है किसी प्रकाश में दिखता है ना, वो प्रकाश उसमें प्रकाश में फर्क नहीं पड़ता है, वो निर्विकार प्रकाश है, वो निर्विकार प्रकाश है जिसमें ये ज्ञान भी ज्ञेय हो जाता है, तो ये त्रिपुटी भी ज्ञेय हो जाती है, तो ये अहंकार रहित वो स्वरूप है, वो आपका स्वरूप है खास। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो।
ये जो इंद्रियों से तद्रूप होकर विषयों को ग्रहण करता है,
हाँ,
वो अहम करता है या अहम का प्रकाशक करता है,
दोनों मिल जाते हैं, आम के साथ प्रकाशक मिल जाता है,
वो प्रकाशक मिलता है,
हाँ,
और तद्रूप होता है अहम,
हाँ तद्रूप मैं नहीं प्रकाश खुद प्रकाश अहम के तद्रूप हो जाता है, अहम और प्रकाश है इन दोनों में भेद मालूम नहीं देता, एक हो जाते हैं, लोहा तपा हुआ लोहा हो जैसे तादात्म्य,
जो सुनने की इच्छा करता था वही देखने की करता है,
वही देखने की करता है,
वही सुनने की करता है, हाँ, रचना की
करता है, उसमें तो अहम है, परंतु इसका खास वो स्वयं कब होता है कि सुखी दुखी होता है, सुखी दुखी होता है वो चेतन है, अहम इंद्रियों के साथ वो खाता है पीता है झूलता है, ये अहम है, चेतन के साथ मिला हुआ है, चेतन सब मिला हुआ है, इंद्रियों में इंद्रियों के विषयों में सब जगह मिला हुआ है, चेतन तो अलग हो नहीं सकता ना, वो मिला हुआ है, परंतु ये अलग अलग करने में तो ये कार्य कर्ण करते तो हेतु प्रकृति, प्रकृति की मुख्यता है, और पुरुष सुख दुख का नाम भोगते तो हेतु से पुरुष है वो सुख दुख होने में हेतु है, तो सुखी और दुखी बिना चेतन के नहीं हो सकता, इंजन चलता है तो उसमें चेतन धीरे चलाना तेजी चलाना सिटी देना ये चेतन करता है, और चला अगर छोड़ दो चलना में तो इंजन चलेगा, उसे पुरुष नहीं चलता है, परंतु उसको चलाने में पुरुष हेतु है। इस तरह से इसमें चलाने में हेतु है अहंकार, पर अहंकार के चलाने पर जो सुखी दुखी होना है ना, ये खास पुरुष हेतु है। अगर तादात में नहीं हो तो सुख दुखी नहीं होता। ज्ञान से क्या होता है कि इनका विवेक होने से जड़ता चेतन अलग हो जाता है, तो चेतन में सुख दुख नहीं है। वो सुख दुख सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में सम हो गया। क्यों हो गया कि स्वस्थ। अरे पुरुष प्रकृति स्था भोगते, प्रकृति में स्थित होता भोगता बनता है। अरे सुख प्रकृति में स्थित नहीं होगा तो सम हो जाएगा, सुखी दुखी नहीं होगा। तो ये सुखी दुखी नहीं होगा, सुख दुख का स्वस्थ स्वस्थ हो गया, सम दुख सुख स्वस्थ। और पुरुष प्रकृति से ही भोगते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगो से सदस्यु। और सुख दुख में पुरुष सुख दुख का नाम भोगते तो हेतु रोचे थे, भोगता हेतु है, तो प्रकृति होने से सुख दुख भोगता होता है। और पुरुष नहीं है तब सम दुख सुख क्यों के स्वस्थ अपने स्वरूप में से दुआ। तो अपरा प्रकृति है उसमें अलग होकर परा प्रकृति रूप हो गया अपने स्वरूप में, तो वो स्वस्थ हो गया। अरे स्वस्थ होकर इससे भी एक बढ़िया बात कही मैंने कल कहा, वो कौन परमात्मा, वो परमात्मा साथ हो जाए। स्वयं आप है जड़ के साथ मिला, जड़ से विमुख होकर अपने स्वरूप में स्थित हुआ, अपने स्वरूप में स्थित और परमात्मा के साथ अर्पित हो गया, फिर मौज होगी, फिर आनंद है। फिर कुछ भी करना नहीं है, जानना नहीं, बाकी नहीं कुछ भी करना, जानना पाना करना कुछ बाकी नहीं। ये बात
जो भगवान की स्थितियों में आता है कि आप ही जीव बनकर के संसार के विषयों का भोग करते हैं, आप फिर भी निर्लिप्त रहते हैं,
आप निर्लिप्त रहते हैं,
प्रकाश तत्व तो वो निर्लिप्त है, और अहम के साथ मिलकर के जो
सुखी
होते हैं
वो भोग
तो आप जीव है,
वो जीव रहता है। सब दिखता है ना
जी,
तो श्लोकों में आवे आपके देखो, अब कोई भी
गुणवान ही
है,
गुणेश
गुणवान इव गुणवान की तरह होता है, गुणों के साथ मिलकर और वैसे गुण रूप हो जाता है, आंख रूप होकर देखना लगता है, आंख रूप होकर मैं देखता हूँ, देखने का आनंद आता है, अपने में देखता सुख, तो भोक्ता बन गया वहाँ उस तदाकार होकर के। तदाकार नहीं हो तो आंख का प्रकाश हो जाएगा, तदाकार नहीं होगा तो सुख का भोगता नहीं होगा। उपदृष्ट हनुमंत से भरसा भोगता महेश्वर परमात्मेश्वर देश में पुरुष पर है, परे अनादित्वा निर्गुण परमात्मा आय मध्य शरीर स्थोप बनते न करो थी न लिप्य से, वास्तव में करो थी लिप्य से नहीं है, सदाकार करो थी लिप्य से जैसा। इससे न अहंकृत भाव, ये अहंकृत भाव न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे न लिप्य थे, अथवा से मान लो नाम से निवृत्त थे, अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, तो अथवा भी नंत न निवृत्त थे, वो वंदना नहीं है।
शोक मोह अहंकार जितने भी हैं सब के सब अहम में होते
हैं,
साफ है,
साफ है,
वो लिखा हुआ है, ये उसके नहीं है,
स्वयं के नहीं है,
स्वयं के नहीं है, अहंकार से अहंकार से ही दृश्य थे।
हाँ, तो अहंकार भी मूल आत्मा करता हम इसी मान्य से
उस मान्यता में है, सब
मान्यता तो आम के साथ है। तो कर्ण निरपेक्ष का मतलब अहम से रहित विवेक को ही मुख लेकर चले तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए, प्राप्त है ही, वो तो स्वतः प्राप्त है स्वाभाविक ही। अस्मित मोह संकल्प बोलो एकदम स्पष्ट है।
कर्ण से तो महाराज नया कार्य होगा,
हाँ नया कार्य होगा, वो तो प्रकृति का कार्य है, कर्ण जितना कारक है सब के सब, तो कारकों में तो प्रकृति चलेगी इधर। इस बात मैंने बहुत बार कहा है कि ये सांसारिक काम होता है, इस रीति से परमात्मा प्राप्ति नहीं है, लोग इस रीति से ही करते हैं, इस रीति नहीं हुआ, रीति दूसरी है, तो रुचि क्या विवेक है, उसमें विवेक की प्रधानता है।
कर्ण से जो मिलेगा वो नहीं मिला हुआ मिलता है,
नहीं मिला मिलता है, जो कभी ठहरेगा नहीं रहेगा नहीं, वो ऐसा है। हरदम देखो विकार होगा ही नहीं, वो कर्ण रहित होने से होगा, तो विवेक प्रधान में ही उसे रहेगा। ठीक इसमें कोई पूछना हो तो पूछो। इस विषय में बोलो, कोई समझे तो बोलो, नहीं तो चुप रहो और बात मत छेड़ो।
परा प्रकृति तो जीव का अपना स्वरूप है।
हाँ, वो जीव का स्वरूप है, वो है परमात्मा का अंश। जो वास्तव में एक बात बारीक बताओ, परमात्मा का अंश, परमात्मा ने कहा है कि मम एव अंश है, परंतु वास्तव में वो अंश नहीं बना है, प्रकृति के अंश अहंकार को धारण करने से अंश हो गया, अंश हुआ नहीं है।
पुरुष दोनों से भिन्न है,
प्रकृति से भिन्न है,
प्रकृति
अहम से
परा और अपना दोनों प्रकृति है क्या?
दोनों प्रकृति है। तो परा प्रकृति अपरा, अपरा तो ये जड़ हुई, परा प्रकृति चेतन हुई, चेतन को परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश, तो परमात्मा का टुकड़ा नहीं हुआ है, उसका अंश नहीं हुआ है, किंतु प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने से वो अंश रूप हो गया, कर्ता अहम इसी मन्य से मान्यता होगी।
दोनों को जो प्रकाश देने वाला है वो
प्रकाश देने वाला स्वयं है, वो है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल अहम के कारण से अहम में परिवर्तन होता है, वो अपने मान लेता है, वो अपने मान लेता है। ये बात नारायण 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 नारायण।